आगे से क्या कहते। यहाँ पे तो छोटा सी बात सुन के ना लोग डर जाते हैं, कहते हैं हाय किसी का हिजाब खींच लिया था, लो छोड़ो हमारे हिजाब, आज से हमने हिजाब नहीं लेना। हाय मुसलमानों को तो जॉब्स नहीं दे रहे, और छोड़ो छोड़ो हम तो अपना नाम ही कुछ जॉन जैक कुछ और रॉबर्ट रख लेते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले क्या मुसलमान। ओ अच्छा पता चला कि मुसलमानों की दुकानों को लूट रहे हैं, मुसलमानों का तो कोई वाला चीज सब ही निकाल दो, हम नजर ही ना आए मुसलमान। इतनी इतनी छोटी चीजों के ऊपर इतनी हकीर दुनिया के पीछे सब छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। किसी को ना पहचानो मैं मुसलमान हूँ, किसी को ना पता चले, मुसलमान की हर आइडेंटिटी में छोड़ दू। और यहाँ पे वो सीना ठोक के कहते हैं कालू लन सीरा का आलामा जय अनामिनल बीना, हम हरगिज नहीं तरजीह देंगे उसके ऊपर जो आ गया हमारे पास। हमारे पास तो खुली निशानियां आ गई, इससे ज्यादा खुली निशानी क्या होगी, हमारे सामने आ गई। और वो जात जिसने हमें पैदा किया हम उसके ऊपर किसी को तरजीह नहीं देंगे। ये खुली निशानी हमारे सामने सब कुछ आ गया, और जिस जात ने हमें पैदा किया हम उसके ऊपर किसी और को तरजीह देते हैं। हम ये हरगिज नहीं अब कर सकते, हरगिज लन हरगिज नहीं, अब इसको तो भूल जाए फिरौन। अल्लाह अकबर कितनी बड़ी बात उनको समझ आ गई कि अल्लाह पे किसी को तरजीह नहीं देनी, अल्लाह की बात पे किसी को तरजीह नहीं देनी, किसी की हैसियत नहीं है अल्लाह ताला के आगे। अल्लाह अकबर ईमान ऐसे इंसान को बदल देता है, उसकी तरजीहात बदल जाती है। ये चीजें बड़ी नहीं लगती, अल्लाह की जात बड़ी लगती है। फिर छोटी छोटी बातों पे इंसान अल्लाह को पीछे करके इन चीजों को नहीं पकड़ लेता, फिर अल्लाह की जात को आगे रखता है। तो छोटी छोटी चीज के ऊपर दिल बर्दाश्त नहीं हो जाता, गमजदा नहीं हो जाता, हाय मुझे ये नुकसान हो गया, हाय मुसलमान होने की वजह से मुझे वीजा नहीं मिलेगा, मेरी गाड़ी का नंबर ना नोट कर ले मुझे मस्जिद जाते हुए देख के, मेरे पीछे फलाना ना पड़ जाए, FBI ना पड़ जाए, पुलिस ना पड़ जाए, फलाना ना देख ले, एक्सट्रीमिस्ट लोग ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। इतने फियर्स इनको क्यों नहीं हुआ? इसलिए के दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजीब अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसको लज्जत मिल जाए ना, जिसको ये पता चल जाए कि मेरा रब कौन है, मैं किसकी बंदी हूं, जो जी जिसकी भी लज्जत है अल्लाह ताला को जानने की उसकी मारफत की, फिर भी इंसान का दिल बेगाना हो जाता है इन चीजों से, फिर नहीं ये मैटर करती। ये हमारे जैसे लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह की बड़ाई नहीं, उसकी अजमत ही नहीं, तो हर चीज ही बड़ी लगती है, फिर हर चीज उसके ऊपर मर मिटने लगे हैं। फकदिमा अंतकाद है, कर ले फिरौन, करना है जो कर ले तूने, जो फैसला तूने करना है कर ले, इन्नमा तकदी हादी हयात दुनिया, तू बस तो ही इस दुनिया की जिंदगी का ही फैसला कर सकता है, इससे आगे तो तेरा कोई बस नहीं है। यही कर सकता ना, मौत दे दे, अजियतनाक मौत दे दे, तड़पा तड़पा के मारे, लेकिन बस उतनी देर तक ही अजियत दे सकता है, उतने ही तेरी सजाएं भी होंगी जितना ये दुनिया की जिंदगी है, जितनी सांस है। देखें आप इसमें कितना बड़ा लेसन है, इस दीन की खातिर अगर इंसान को जरा कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ जाता है उसका, तो ये नुकसान कितनी देर का होगा, कितनी देर का, सिर्फ इतनी जिंदगी का ही होगा ना। अब हम तो बात पूरी जिंदगी के लिए भी नहीं होते, चलो साल का हो गया 2 साल का हो गया, चल लेकिन आखिर तो ये जिंदगी खत्म हो जानी है, उसके बाद के तो नहीं है ना। लेकिन इंसान इस नुकसान के ऊपर इतना तड़पता है, इतना परेशान होता है, तो उसको लगता है तो सब कुछ लूट गया। इतने ये जो जादूगर है ना, इनका जो कैरेक्टर है, तो जाहिर है ये तो सच्ची कहानी है, सच्ची बात है, ये इससे सच्ची बात नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने एक एक उनकी बात को कुरान की जीनत बना दिया, एक एक उनके डायलॉग को। ये मेरे फेवरेट किरदार हैं कुरान में, कई होते हैं ना किरदार आपके जो आपके फेवरेट होते हैं, इन ये इसलिए मेरे फेवरेट हैं कि अल्लाह ताला दिखाता है कैसे वो इंसान की काया पलट जाती है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी ऐसे बदल दे जो बिल्कुल मुर्दा हैं, मट्टी हैं बिल्कुल, अल्लाह इनमें जान डाल दे, इनको ऐसे जिंदा कर दे जैसे ये जादूगरों के दिल जिंदा होगा, जैसे ये मुर्दा थे ये जिंदा होकर, अल्लाह ताला हमें ऐसे कर दे, कैसे ये अल्लाह के प्यारे बनकर, कैसे इनको जुर्रत भी आ गई बोलने की फिरौन के आगे। कहते हैं तूने करना जो फैसला कर दे ठीक है, जो तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, यहीं तक दुनिया की जिंदगी तक ही कुछ हमारा नुकसान कर सकता है ना। इनकी नजरों में फिरौन कितना छोटा हो गया कि ना कोई डर है ना खौफ है, जब ईमान आ जाता है तो ऐसे ही होता है, इन्ना आमन्ना भी रब्बी ना। जब देखे उनको फिक्र क्या लग गई, ये नहीं फिक्र उनको लगी हुई कि फिरौन क्या करेगा, भाई अब कितनी पेनफुल होगी ये मौत, क्या कह रहे हैं, इन्ना आमन्ना भी रब्बी ना, हम ईमान ले आए हैं अपने रब पर, लिया फिर अला ना खता या ना, कि वो बख्श दे बस हमारी खताएं, बस वो हमें माफ कर दे हमसे जो कुछ हो गया। कितनी बड़ी फिक्र बन गई उनको, ये नहीं हुआ कि अब हमारा तो सारा बिजनेस ही खत्म हो गया, आए हमारे बच्चों को अब क्या होगा, अब हम मार देगा ये तो फिर ऑन, ये नहीं उनको हुआ। उनको ये नहीं हुआ कि अभी तो हमारे पास फ्यूचर पड़ा हुआ है, अभी तो हमने बड़ी, हमें तो तरक्कियां मिलनी थी, ये क्या हो गया, अब हमारी सजा हमें तजवीज की जा रही, हमने तो बड़ा ओहदा लेना था, घर में भी हम यही बता के आए थे कि आज तो बस समझ लो कि उसके बाद हम पता नहीं कितनी बड़ी पोजीशन में होंगे, फिक्र ही ना करो, क्या इनके बीवी बच्चे नहीं होंगे, अब ऐसे ही आप पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कहीं एलियन उतर के आ गए थे, इनके घर वाले तो होंगे ना, कोई रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त अहबाब होंगे, उस जमाने की भी अपनी पंप एंड शो थी, फिरौन का इकतदार क्या बात क्या चीज थी, कितनी शो थी उसमें भी, वो सब चीजें थी जो कि इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, फिर उनको ये क्यों इतनी फिक्र पड़ गई। इसलिए कि जब ईमान आता है ना, अपनी गलतियां ना बहुत बड़ी लगने लगती, छोटी नहीं लगती, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मोमिन को ना अपना गुनाह ऐसे लगता है जैसे वो पहाड़ के नीचे बैठा हुआ, पहाड़ किसी वक्त उसके ऊपर आके गिर जाए, और मुनाफिक को अपना गुनाह ऐसे लगता है जैसे नाक पे मक्खी बैठी हो, आप ऐसे उसको उड़ा देते हैं ना, कोई चीज ही नहीं है। एक सहाबी रसूल कहते हैं ना कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिन चीजों को इतना बड़ा, जिन बातों को इतना बड़ा गुनाह समझते थे, वो अपने जमाने में कह रहे थे सर, असर अनस रजिला तआला अन्हु की शायद बात है ये, कि वो फरमाते हैं कि तुम अपने जमाने में उनको कुछ भी नहीं समझते, वो उस जमाने में कह रहे हैं, सोचे जो भी बहुत अच्छा जमाना था, खैरल कुरून में से था वो जमाना, उसको वो कह रहे हैं कि तुम तो आज कोई भी ये इन बातों को जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में हम बहुत बड़े गुनाह समझते थे, बहुत बड़ी बात समझते थे, तुम इनको कुछ समझते नहीं, इनको छोटी बातें समझते, तो आज आ जाए तो वो तो कोई चीज गुनाह है ही नहीं, आज तो सारा ही जायज है, तो सब भी करते हैं, ये कौन सी ऐसी बात, सब ठीक है, सब चलता है, तो वो उनको अपने गुनाह याद आने लगे। अव्वल तो ये मानना ही बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए जिनमें तकब्बुर होता है कि हमने, हमसे भी कोई गलती हो सकती, माफी मांगना तो दूर की बात है, हम कोई गलत कर सकते हैं, हम तो नहीं कोई गलती करते, अब मैं इतनी भी गुनाहगार नहीं हूं, हम कहते हैं इससे पता चलता है कि क्या हमारे हालात हैं, मैं इतनी भी गुनाहगार नहीं हूं, तो कितनी है, बहुत थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, तो फिर तो कोई माफी की जरूरत ही नहीं आपको, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे, इन्ना आमन्ना भी रब्बी ना, ईमान लाए अपने रब पे ताकि वो बख्श दे हमारी खताओं को, हम फिर भी सस्ते में छूट जाएंगे, अगर तू हमें सजा भी दे दे फिरौन, तो अगर हमें माफी मिल जाती है ना, तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है, माफी बस हमें मिल जाए, मसला ये नहीं कि तू हमें क्या सजा देगा, और मसला ये नहीं कि अब हमें मौत आ जानी है, हम इस पर रोना शुरू कर दें, रोए पिटे हाय मौत, हाय मरने लगे हैं, हाय फलाना को बुला लो, उससे मिलने, उससे करने वसीयतें कर दें, ये करते, हमें तो फिक्र है कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे, जो आज मरते मरते भी नहीं फिक्र होती, मरते मरते भी फिक्र होती है कि हाय बच्चों को नाम जायदादें लिख दें, फलाने के नाम जायदाद लिख दें, फलाने से ले लेना, फलान का कर लेना, यही होती। वमा अकरहतना अलैहि मिन सिहर, और जो तूने मजबूर किया हमको जादू की वजह से, इसके दो मानी है, एक ये माना कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि मूसा अलैहि सलाम से नहीं मुकाबला करना चाहिए, तूने हमें मजबूर किया कि नहीं करो, तनाजा खड़ा हो गया था नैन में, और दूसरा ये कि फिरौन ने मैंडेटरी किया हुआ था कि वहां पे लाजिम है कि सारे लोग जो है ना अपने बच्चों को जादू की तालीम दिया करें, तो तो तूने हमें, तो कई वालदैन नहीं देना चाहते होंगे, तो तूने हमें मजबूर किया इसकी तालीम में, तो जो हमने ये भी गलती की है इसके ऊपर भी, जो पे तूने हमें मजबूर किया इसमें भी अल्लाह हमें माफ कर दे। नहीं तो देखे कितनी शिद्दत से एहसास है ना अपनी गलतियों का, वरना कहते हैं हम ईमान ले आए, वैसे ही ईमान से तो सारी गलतियां माफ हो ही जाती हैं, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। अब जब ईमान आया तो अल्लाह के आगे बड़े होने की ज्यादा फिक्र है, फिरौन के आगे नहीं। वल्लाहु खैरुन व अबका, तू कहता है तेरा अजाब शदीद है और अबका है, अल्लाह खैर और अबका, इसके दो माने, एक अल्लाह की जात बेहतर है और बाकी रहने वाली, और दूसरी माना क्या है कि अल्लाह ताला से जो खैर मिलनी है, जो सवाब है, जो जजा है, वो भी बेहतर है और बाकी रहने वाली, जो उसकी जन्नत है या उसके सवाब है या उसकी जजाएं हैं, वो बेहतर और बाकी रहने वाली। अल्लाह ताला फरमाता है ना, वल आखिरत तो खैर व अबका, आखिरत बेहतर भी और बाकी रहने वाली, बल तो उसी रून अल हयात दुनिया, तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत बेहतर भी और बाकी रहने वाली भी। तो उसका जवाब देते हैं जो उसने बात कही थी, और फिर कहते हैं तेरे सामने फिरौन क्या मुजरिम बन के, इससे क्या फर्क पड़ता है, तूने जो हमें आज मुजरिम बना दिया है, इन्नहु मैयाती रब्बहु मुजरिमन फइन्ना लहू जहन्नम, जो अल्लाह के पास अपने रब के पास मुजरिम बन के पेश हो गया ना, वहां पे आया, तो उसके लिए तो जहन्नुम है, ला यमूतु फीहा वला यहया। ये दुनिया की सजाएं क्या सजाएं हैं, चाहे दुनिया में कितनी भी सजा दे लो, कितनी भी सजा हो जाए, किसी को कितना भी कोई नुकसान पहुंचा दे, किसी को कितना भी कोई टॉर्चर कर दे, आखिर वो खत्म हो जाएगी मौत के आने के साथ, लेकिन जहन्नुम की सजा ऐसी है कि वहां पे ना जिंदगी और ना मौत है, कि इंसान का हाल ये होगा कि उसको इतनी तकलीफ होगी कि ऐसे लगेगा अभी मौत आई, अभी मेरी जान निकलने लगी, लेकिन जान निकलेगी भी तो नहीं, जान भी तो फंसी होगी, जान भी तो नहीं निकलेगी, तो ना उसको जिंदगी कह सकते हैं कि ये जिंदा है, ना उसको मौत कह सकते, वो मरा ही नहीं है। तो वहां पे उसकी बहुत ही खौफनाक बात जहन्नुम की है, اللهم أجرنا من النار، कि वहां पे मौत नहीं है। तो दुनिया में कोई भी सजाएं हो, किसी को बीमारी भी हो जाए तो मर जाता है, तो उसकी तकलीफ खत्म हो जाती है। इंसान बड़े से बड़े सदमे में भी नहीं हो ना, तो ये सोचता है कि मर जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा सब कुछ, मेरे मरने के साथ ही कहता है मर जाऊं सब चीज खत्म, लेकिन वो सजा कैसी है जिस जो उसमें चला गया, फिर मौत को पुकारेंगे, आए मौत मौत आ जा, मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को तो अल्लाह ताला मौत दे देगा, वो कहां से आएगी, मौत तो अल्लाह की मखलूक है। तो इतनी तकलीफ शदीद के जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उस तकलीफ में होते हुए भी मौत नहीं होगी, तो उनको कितनी रियलाइजेशन हो गई है कि मैं अल्लाह के आगे मुजरिम बन के पेश ना हूं, तू हमें मुजरिम बना दे, सजा दे दे, कुछ कर दे, उस सजा का क्या करें, जब अल्लाह ताला के आगे मुजरिम कोई बन के चला गया तो वहां पे तो ये सजा है कि फिर ना जिंदगी है तो ना मौत है, इतनी उनको समझे आ गई, इनको इतना पता चल गया। अल्लाह अकबर, कि अब जहन्नुम का खौफ सबसे बढ़ के हो गया कि हम अल्लाह के आगे ना मुजरिम बन के खड़े, अल्लाह के आगे सुरखरू हो जाए, कैसे पैमाने बदल गए, कैसे क्या चीज कामयाबी लग रही है और क्या नाकामी लग रही है। वमई यती ही मुमिनन, और जो आ गया उसके पास मोमिन बन के, ईमान ला के, देखिए पहले क्या बताया, जो अपने रब के सामने मुजरिम बन के खड़ा हो। अल्लाह ताला हमें इसे माफ रखे कि हम कभी भी ऐसे कोई दिन आए कि हम अपने रब के आगे मुजरिम बन के खड़े। तो वो जो अपने रब के पास ईमान की हालत में खड़ा हुआ, कद आमिल सोलेहात, उसने अमल किए नेक, और वो ऐसा था कि दुनिया से नेकी करके गया। देखे सुभान अल्लाह, उनको भी ये पता है कि ईमान काफी नहीं है सिर्फ कि हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए, उसके बाद करके कुछ दिखाया कि नहीं। तो इन्होंने क्या नेक अमल किया? इनका अभी तक कोई नेक अमल देखा आपने? हाँ, इन्होंने सजदा किया और फिर अब तबलीग कर रहे हैं, और फिर अल्लाह के ऊपर जो यकीन इन्होंने दिखाया, और फिर जम गए अपने ईमान के ऊपर। ये सब साले अमल ही तो है। तो कहते हैं जो अल्लाह के पास ईमान की हालत में आ गया, यानी उसके आगे हाजिर हुआ, क्योंकि हाजिर तो मैंने भी और आपने भी, हम सब ने होना। लेकिन असल बात यह कि किस हालत में हम अल्लाह के आगे हाजिर होते हैं, हमारी क्या हालत होती है उस वक्त, ईमान और उसके साथ नेक अमाल के गठड़ियां की गठड़ियां, या अल्लाह ना करे कि मुजरिम की शक्ल। कि जैसे कोई मुजरिम होता है ना, पुलिस से भागता है भागता है, मुझे पकड़ ना ले, एक दिन तो पकड़ा जाता है। इस तरह बाज अल्लाह के मुजरिम होते हैं, वो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, इसलिए अल्लाह से भागते हैं भागते हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? आज तो अल्लाह ढील दे देता है, अल्लाह सुभान तआला पूछता नहीं है, पकड़ता नहीं है, लेकिन एक दिन तो पकड़ लेगा ना। फिर जब उसके सामने खड़े होंगे तो अब तो कहीं भागना नहीं, अब तो पैर ही नहीं हिलेंगे वहां से। तो दुनिया में भी कानून होता है, और कानून में मुजरिमों को सजा मिलती है, और जो अल्लाह की अदालत होगी, वहां की जब सजा होगी किसी मुजरिम को, तो क्या होगा? उसकी सजाएं भी बड़ी हैं और उसकी जजाएं भी बड़ी हैं, दोनों ही चीजें बहुत बड़ी हैं। इसलिए जो ईमान ला के सालिह अमल करे, वहां पे एक मुजरिम होना काफी था, यहाँ पे दो चीजें जरूरी हैं, ईमान, सिर्फ ईमान नहीं, सवाले अमल भी, जिस अमल से हम डरते हैं और बचते हैं और कहते हैं हमसे नहीं अमल होता, इसके बगैर गुजारा नहीं है, याद रखें। सिर्फ एक दफा कलमा पढ़ लिया वो ही काफी है, ये नहीं है। फउलाई का, ये लोग हैं, लहुमुद दरजात, उनके लिए है दरजात अलउला, बुलंद दर्जे अल्लाह के हाँ, उनके लिए बहुत बुलंद दर्जात है, जन्नत व आदनिन। अब देखिए उनको कैसे ये बातें आ गई, जन्नत का भी पता है, जन्नत हमेश की सदाबहार, आदन की जन्नत, आदन जन्नत का एक नाम भी है और सदाबहार के लिए भी मतलब है। तजरी मिन तहती अल अनहारु खालिदीन फीहा, ऐसी जन्नत है जो कभी खत्म थोड़ी होना, इनके नीचे नहरें बहती होंगी और हमेशा रहने वाले होंगे उसमें। वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का, ये बदला है उसके लिए जो तजक्का, तजकिया करे, पाकी इख्तियार करे। किस चीज से पाकी इसकी? हाँ, हर अपनी जिंदगी के हर गोशे में पाकी इसकी, यानी उसकी पूरी लाइफ जो है ना, वो पाकीजा जिंदगी, बातचीत करने से लेके अकीदा, लाइफस्टाइल, अमल, उसके जिस्म, उसका माहौल, उसका किरदार, उसका कैरेक्टर, उसकी जो क्वालिटीज है, सब पाकी वाली हो। उसका बोलना चालना, उसका उठना बैठना, उसका देखना है पाकीजा नजर हो, उसका सुनना पाकीजा हो, पाकीजा बातें सुनने वाला। तो हर तरह से अंदरूनी बैरूनी, अंदर से भी दिल पाकीजा साफ, गलास्तों से पाक, गंदगियों से पाक, जैसे बाहर जिस्म गंदा हो जाता है, दिल भी तो गंदा हो जाता है, हसद से, कीने से, बोझ से, नफरतों से, लालच से, कुफर से, बिदतों से, सारी चीजों से दिल भी तो नापाक होता है। तो वो कहते हैं ये जजा उसकी है जिसने पाकीजा जिंदगी गुजारी, जो पाकीजगी इख्तियार करता है। और ये तो पाकीजा हो गए ना। देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद जालिम बादशाह के आगे कलमा हक बोलना है, और इन्होंने इतना बड़ा जिहाद कर दिया, ये भी तो साले अमल है इनका। आप कहेंगे इन्होंने कौन सा अभी नमाजें पढ़ ली, कौन से रोजे रख लिए, कौन से इन्होंने अमल कर लिए? नहीं, सिर्फ वो ही नहीं है अमल, ये भी अमल, इतना बड़ा जिहाद के इतना जालिम बादशाह, और उसके आगे वो बरमला बोल रहे हैं। सबको तबलीग कर रहे हैं, और उन्हें बता दी कि कौन सी चीज है जो कामयाबी है, कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी नाकामी है। तो नाकामी ये नहीं है कि फिरौन तुम हमें कितनी बड़ी सजा दे दे, नाकामी मैंने आपको पहले भी बताया था, नाकामी सबसे बड़ी ये है कि इंसान की जो आखिरी सांस जो है इस दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी या कुफर की हालत के अंदर निकले। और सबसे बड़ी कामयाबी इस पूरी दुनिया की ये है, ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, ये नहीं आपका करियर बहुत बड़ा है, ये नहीं कि आपके बिजनेस किस किस कंट्री में है, ये नहीं कि आपके पास जायदादें कितनी है, ये नहीं है कि आपके घर कितने हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके बच्चे कितने कामयाब है, कितने बड़े ओहदों पे पहुंच गए। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि मेरी और आपकी आखिरी सांस जो इस दुनिया में निकले वो ईमान के ऊपर निकले, कलमे पे निकले, बस ये कामयाबी। उनको ये बात समझ आ गई थी, इसलिए उनके लिए बड़ी चीज नहीं अब सलीब चढ़ाएगा, अब ये करेगा, अब हमें वो करेगा, अब हमें अजाब ऐसा देगा, अब हमें, इसलिए ये बड़ी चीज नहीं रहेगा। ये बात अल्लाह ताला हमें समझ आ जाए कि हम इस चीज की फिक्र में लगे, हमारी आखिरी सांस ऐसे ही निकले कि तेरा नाम हमारी जुबान पे, तेरा कलमा हमारी जुबान पे, सुभान अल्लाह बिहम्दी का नशतु ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरु का व नतूबु इलैह। تلاوة سنة
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى